سورة نساء آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اس آیت کا انداز دیکھیں تو بڑا ہی مختلف ہے اور بڑا ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، افلا کیا پس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ تو یہ جو منافقت کا کردار کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے اس میں دو رنگی، کنٹراڈکشن، ڈبل فیس، یہ کیوں آتا ہے؟ تو یہ جو بھی منافق کا کردار ہے، جو شکوک کی کیفیت میں رہتے ہیں اور اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات دھرنا، پھر تو اس کی اصل وجہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو اس آیت میں ایک طرف منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ قرآن کو بھی اللہ کا قرآن نہیں سمجھتے تھے نا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں سمجھتے تھے، اور دوسری بات کیا تھی کہ ان کے کردار کے اندر جو ناپختگی تھی، ان کی سوچ اور ان کا جو انداز فکر تھا جو بڑا مختلف تھا، کہ دنیا پرست، مطلب پرست، اور جو کم تھا ان کا کردار، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یعنی اگر انسان قرآن پر غور کرے تو اس کا کردار جو ہے پھر ایسا کردار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر جو ہے یتدبرون القرآن، دو چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں، پہلے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے اور بات سمجھائی ہے کہ سوچو تو صحیح، ذرا پوچھیں تو صحیح ان سے کہ یہ غور تو کریں کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، کہ کیا یہ نہیں کرتے، کیا تدبر کس چیز پر؟ قرآن پر. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن، رحمان ہے نا، سکران، فولان کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ کوئی چیز ہو اور بار بار وہ کی جا رہی ہو، جس میں تکرار بھی پائی جاتی ہو. تو قرآن جو ہے ایسی کتاب ہے جو مسلسل پڑھی جا رہی ہے. قرآن کا لفظ قرآن مجید میں 60 دفعہ آیا ہے، اور قرآن مجید جو ہے، آپ قرآن مجید پر اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ قرآن کی عظمت، اس کی اہمیت یہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے قرآن کے اندر اس کو ڈوبنے کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے جو اس کو مل جائے گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الرحمن علم القرآن. اور کون سی ایسی چیز ہے جو کسی کو خالق کے قریب کر دے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ کسی کو خالق کا تعارف دے، اللہ کا تعارف دے؟ تو وہ چیز صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن ہے. اور اگر قرآن کوئی شخص جو ہے اس کو پڑھتا ہے، جو اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، تو کیا ہے کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس میں دنیا کی محبت دبتی ہے، آخرت کی محبت جو ہے وہ ابھرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں سورۃ یونس میں کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ دو کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے کہ یہ خبر، یہ چیز، یہ خیر اللہ نے بھیجی، یہ خیر اللہ نے بھیجی ہے. اس پر تو کیا کرنا چاہیے، لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے. سورۃ یونس آیت 57-58، خیر مما یجمعون، کہ جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ بہتر ہے، تو کیا کریں، لوگ خوشیاں منائیں. ہم خوشیاں کس میں مناتے ہیں؟ عید خوشی کب مناتے ہیں؟ خود بخود عیدیں بڑھا دی، کیک کاٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، جہاں جب ہمارا دل چاہتا ہے. لیکن قرآن کے جمع کرنے پر، قرآن کے سیکھنے سکھانے پر خوشیاں منانی چاہیے. تو دراصل جو ہے قرآن کی عظمت، قرآن کی معرفت، قرآن کی قربت، قرآن کی آیات میں سینکڑوں نئی دنیا آباد ہیں. قرآن کے پڑھنے میں اور پڑھانے میں جو لمحات گزریں گے، کئی صدیاں ہیں جو پنہاں ہیں اس میں. تو دراصل قرآن ہی وہ دولت ہے जो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी की मंजिल से जो है वो हम किनार कर सकता है और आगे ही आगे जो है वो ले जा सकता है। क्योंकि कुरान मजीद जो है, कुरान का सफर जो है, ये इंसान और इंसानियत के लिए, इंसानी तहजीब के फैसले के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए, उसके फ्यूचर के फैसले के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। एक फैसला कौन है कि कोई शख्स कुरान पढ़ता है और जो नहीं पढ़ता, उन दोनों की सोच, उनका किरदार, उनका हाल और मुस्तकबिल एक जैसा नहीं हो सकता। और आप देखें यहाँ पे तदब्बुर की बात हुई है, सहम का ये दूसरा दर्जा है। एक तो है ना कि आपने जस्ट उसको पढ़ा, और दूसरा क्या है कि आप हर लफ्ज, हर आयत और सूरत के मुकम्मल मानी मालूम करने की कोशिश करें। वो अल्फाज हैं, तशबीहात हैं, मिसालें हैं, तो उनको समझना, बाज़ अवक़ात मिलते जुलते लफ्ज हैं। अब तक आपने डरने के, एक डरने के लफ्ज के कितने माने पढ़े हैं, खशियत भी पढ़ा और खौफ भी पढ़ा, तकवा भी पढ़ा, है ना, हैबत है या वजल, वजला है, तो बेशुमार आपने लफ्ज जो है वो पढ़े हैं। तो एक ही चीज के कितने, तो मानी में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है ना। और अब होना क्या चाहिए कि कुरान मजीद जो है उस पर तदब्बुर किया जाए। तो तदब्बुर जो है ये कैसे किया जाता है, तदब्बुर करने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि जो बड़े इमाम हैं या स्कॉलर हैं वो तदब्बुर करेंगे। अफला ये तदब्बर उन्होंने कुरान आम पब्लिक को मुखातिब किया है। और अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते थे कि अफला यकरा उनल कुरान, कि ये कुरान पढ़ते क्यों नहीं है, ये तदब्बरून अल कुरान का जो इस्तेमाल किया गया वो क्यों है कि लोग इसके मानी पर, इसके मजामीन पर जो है वो गौर करें। क्योंकि जब तक तिलावत में, किरात में तदब्बर ना हो, तफक्कुर ना हो, तो फिर क्या है कि बहुत सी चीजें जो है वो समझ में नहीं आ सकती। और इस सिलसिले में अगर आप गौर करें तो सहाबाए कराम का किरदार क्या था, वो लोग जो थे वो क्या करते थे, वो बताते थे कि कुरान मजीद उनके, हाँ क्या कुरान की उनकी नजरों में, उनकी जिंदगी में कितनी अहमियत है। वो जंगों में जाते थे ना, खाना खाना भूल जाते थे, कुरान पढ़ना पढ़ाना नहीं भूलते थे। एक दफा हजरत अंस रजी अल्लाह अनु बिन मालिक ने कहा, अक्सर ऐसा होता है कि एक शख्स कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान ऐसे शख्स पर लानत करता है क्योंकि वो उसे समझता नहीं है, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं सही से, उसको पता ही नहीं कि क्या कह रहा है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह के नजदीक कुरान समझना ईमान की अलामत है। बहुत जमाना गुजर चुका है, ऐसा वक्त आ गया है कि मैं देखता हूं कि एक शख्स को ईमान लाने से कबल मुकम्मल कुरान दिया जाता था, वो फाते से आखिर तक तमाम सफात पढ़ जाते थे। लेकिन क्या था, आज के दौर में भी अगर हम देखें तो हम पढ़ते हैं क्या कुरान हम, लेकिन क्या करते हैं कुरान को, ना हमें उसके अहकामात का पता चलता है, ना ड्रामों का पता चलता है, ना उन जगहों का पता चलता है जहां रुकना चाहिए, है ना। और ये वाली भी आप बात देखें कि हम तो ऐसे कुरान को पढ़ते हुए ऐसे जंप करते हैं जैसे कोई जुलूस जो है, जब वो जा रहा होता है कोई, तो जुलूस में भागने वाला जंप करता है, फलांगता है, ऐसे फलांगते हैं ना, अंदाजा नहीं होता कुरान क्या कहता है, क्या करना है। फिर इसी तरह एक दफा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने एक शख्स को कुरान को बुड़बुड़ाते हुए सुना कि कुरान पढ़ा है, लेकिन बुड़बुड़ाने के अंदाज में फरमाया, इसने ना कुरान को पढ़ा ना खामोश रहा। हजरत अली रजी अल्लाह का कौल है कि जिस कुरान के पढ़ने पर गौर ना किया जाए इसके पढ़ने में कोई खैर नहीं। अबू सुलेमान कहते हैं कि मैं एक आयत तिलावत करता हूँ, फिर चार पांच रातें इसके साथ गुजारता हूँ, अगली आयत पर इस वक्त तक नहीं आता जब तक कि ज़ेरे गौर आयत पर अपना तदब्बर मुकम्मल नहीं कर लेता। तो सहाबा जो थे उन्होंने मुख्तलिफ हल्के कुरान के बनाए हुए थे, कहीं वो किरात सीखते थे, कहीं वो तदब्बर और तफक्कुर सीखते थे, और कहीं वो जो थे वो उसका हिफ्ज़ सीखते थे, कहीं मानी और मतालिब पर गौर करते थे। हजरत जो है वो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में भी आता है ना कि कहते हैं कि सूरत अल बकरा जो है कितनी देर में मुकम्मल की, 8 साल में, 7 साल में या 8 साल में। तो क्या है कि पढ़ते जाता था, साथ साथ अमल करता जाता था, है ना। और इसी तरह जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का एक और सहाबी का कौल है कि मैं अलकारिया या अलकदर जैसी सूरतें जो हैं, एक ये पढ़ना है और एक है आल इमरान जैसी सूरतें पढ़ना, तो मैं आल इमरान और अल बकरा जैसी सूरतें फर-फर पढ़ जाऊं, मैं इससे बेहतर समझता हूं कि ये सूरतें पढ़ूं जो अलकदर है, अलकारिया है, लेकिन समझ कर पढ़ूं। तो असल चीज क्या है कि तिलावत का भी अजर है, लेकिन उसके साथ साथ तदब्बुर करना, गौर व फिक्र करना उसका जो है वो बहुत अजर है और उससे हमारी जिंदगियां जो है वो बदलती हैं। तो ये किताब जो है ये हदायत है और हमें अपनी जिंदगियां जो हैं इस हदायत को समझने के लिए जो है वो गुजारनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो फरमाते हैं कि अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, सूरत मोहम्मद आयत 24, कि क्या ये कुरान पर गौर नहीं करते या इनके दिलों पर ही ताले लगे हुए हैं। तो आप देख लें, अच्छा हम कुरान पर गौर नहीं करते लेकिन दूसरी किताबें कैसी तवज्जो से पढ़ते हैं, कोई नावल हो गया, कोई अफसाना हो गया, कोई फ्लायर आ गए, है ना, कोई इधर उधर की बुक्स आ गई, तो कहते हैं कि जब तक इसको पढ़ना लें छोड़ेंगे नहीं। और कुरान की जब बात आती है तो कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं, और हम कहते हैं कोई बता दे, हम कहां इतना वक्त लगाए और हम तो इतने पढ़े लिखे ही नहीं, और बाकी सब चीजें पढ़ लेते हैं, सब चीजें समझ लेते हैं, अनपढ़ लोग हैं यहां आकर इंग्लिश बोलने लगे, कुरान की अरबी सीखने के लिए वक्त निकालने को तैयार नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वलौ काना मिन इंद गैरिल्लाही लवजदु फीही फी इख्तिलाफन कसीरा। फरमाया कि यानी अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और तरफ से होता तो इसमें बहुत कुछ इख्तलाफ पाया जाता, ये तो एक अल्लाह की तरफ से है ना, इसमें इख्तलाफ नहीं है। शहीद बिन जुबैर कहते हैं रजी अल्लाह अन्हो कि एक शख्स हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हो के पास आया और कहने लगा कि मैंने तो कुरान में कई इख्तलाफात की बातें देखी हैं। उनमें से एक उसका सवाल ये था कि कुरान में एक आयत है कि फला अनसाबा बैनहुम वला हुम यतसालून, कि कयामत के दिन कोई रिश्ता हायल ना रहेगा और ना वो एक दूसरे को पूछेंगे, बड़ा नफसा नफसी का आलम होगा। और दूसरी जगह कुरान में है वह अकबल अबादहुम अलाबादी यतसालून, कि इनमें से कुछ इनके सामने आकर एक दूसरे से सवाल करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने कहा कि फला अनसाबा बैनहुम जो है ये उस वक्त की बात है जब पहली दफा सूर फूंका जाएगा और आसमान और जमीन वाले सब बेहोश हो जाएंगे, तो उस वक्त किसी को किसी का होश नहीं होगा और कोई एक दूसरे से कुछ नहीं पूछेगा भी। और दूसरी आयत में जो एक दूसरे सवाल करने का जिक्र है ये दूसरे नफखाए सूर के बाद का है। तो बाज लोगों को ना रेफरेंस नहीं आता, वो पूरा पसे मंजर नहीं पता होता, वो चीज को निकाल कर कहते हैं कि ये चीज ऐसी है अपनी मर्जी से ना। फिर इसी तरह से जो है वो उसने एक सवाल पूछा कि कुरान में कहता है वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, कि अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। और दूसरी आयत है कि क़यामत के दिन मुशरिक कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, क्या कहेंगे मुशरिक, अल्लाह की कसम हम शिर्क नहीं किया करते थे। हालांकि अल्लाह कह रहा है कि मुशरिक ये कहेंगे कि अल्लाह तेरी कसम हम शिर्क नहीं किया करते थे, तो गोया वो असल बात छुपाएंगे, है ना। तो इसका जवाब जो है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह उन्होंने ये दिया कि कयामत के दिन जब अल्लाह ताला इखलास वालों के गुनाह बख्श देगा तो मुशरिक आपस में इस्लाह करेंगे कि चलो हम भी जाकर कह देते हैं, मशवरा करेंगे कि क्या करें ना, तो कहेंगे चलो हम भी जाकर कहते हैं कि हम मुशरिक नहीं थे, तो अल्लाह ताला इनके मुंह पर मोहर लगा देगा और इनके हाथ और पांव बोलना शुरू कर देंगे और उन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह से कोई बात छुपाई नहीं जा सकती। तो यही वो वक्त होगा जब काफिर ये आरजू करेंगे काश वो दुनिया में मुसलमान होते, तो वो छुपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छुपा नहीं सकेंगे। तो ये उन्होंने उसको जो है वो आपस में फिर जो है वो जोड़ा है। फिर इसी तरह उन और भी बहुत सी इसकी मिसालें उसने इकट्ठी की हुई थी, जो जाकर जो है वो उनसे बात की तो उन्होंने हर बात का जो है वो जवाब दिया। तो असल बात यह है कि आज भी कुरान पर बहुत से लोग कहते हैं जिसमें इख्तलाफ नजर आता है, इसमें तफसील नहीं मिलती, इसमें बात समझ में नहीं आती, तो ये वजह क्या होता है कि कम इल्मी होती है, कम अकली होती है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। तो अगर लोग कुरान पर तदब्बुर करें तो दुनिया ही नहीं बल्कि आखिरत भी उनका जो है वो मिल जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र करने वालों पर तफक्कुर तदब्बुर करने वालों को अहमियत दी है। एक दफा मस्जिद में गए, आपने देखा कि कुछ लोग बैठे जिक्र कर रहे हैं, एक ग्रोह मुसलमानों का जिक्र कर रहा था सहाबा का, दूसरा जो है ना दीन सीख रहा था, सिखा रहा था, है ना। तो आप जो है आप सिखाने वालों में जाकर बैठ गए, जो सीख रहे थे और सिखा रहे थे उनने बैठकर कहा कि मुझे भी मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे भी मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। तो असल बात क्या है कि तदब्बुर करना, गौर व फिक्र करना और फिर अपनी जिंदगी के अंधेरों को रोशन करना, ये बहुत जरूरी है। बाज चीजें हमारी जबान की नोक पर होती हैं, हम याद करते हैं लेकिन जब मानी नहीं आते तो फिर अमल नहीं करते, जब अमल से दूर होते हैं तो इस्लाम जो है उसको बहुत नुकसान होता है। फिर फरमाया کہ اگر یہ کسی غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا، یعنی گویا کہ کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے کہ اس کے مختلف رنگ ہوں. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ لوگ جب بھی کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ امن کی خبر ہے یا خوف کی، اذاعوا بہ، تو اس کو جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں، عام ہر طرف جو ہے اس کو کر دیتے ہیں. وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر یہ لوگ اسے ردوہ لوٹا دیتے رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف، تو ان میں سے جو لوگ یعنی ان کے جماعت کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان تک پہنچاتے، لعلمہ الذین، تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی، یستنبطونہ منہم، کہ ان کے درمیان وہ اس بات کی صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ اسے استنباط کرتے، یعنی اسے صحیح نتیجہ جو ہے وہ اخذ کر سکتے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ میں حالات ایسے تھے کہ افواہیں پھیلتی رہتی تھیں، کبھی کوئی افواہ یا اطلاع آتی کہ فلاں قبیلہ مسلمان پر حملہ کرنے والا ہے، کبھی ایسا ہوتا کہ فلاں دشمن جو ہے وہ حملہ کر دے گا. تو جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ ان خبروں میں بڑی دلچسپی لیتے تھے، وہ ہنگامہ پرست تھے، وہ ہنگامہ پسند تھے، تو ان کو تو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اسلام جیتا ہے یا کہ کچھ اور. تو وہ تو جب بھی کوئی ایسی باتیں ہوتی تھیں تو کیا کرتے تھے کہ وہ پھیلا دیتے تھے. اور اس سے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ایک اہم نصیحت کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جب بھی ایسے حالات پیش آئیں پھر تم لوگ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جو افواہیں ہیں ان کو تم پھیلانا شروع کر دو، بلکہ تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی اطمینان بخش بات ہو یا خوفناک خبر، کوئی بھی خبر ہو، تو اس کو پھیلانے سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ تک پہنچایا جائے. اور اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو اولی الامر، کہ جو بھی صاحب امر ہیں، جو بھی محفل کے اندر یا کسی جماعت کے اندر جو ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہیں یا گھر کے اندر کوئی ذمہ دار لوگ ہیں، تو ان تک جو ہے وہ بات پہنچانی چاہیے. تو جو ضعیف اور کمزور مسلمان تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اس کو لے کر جو تھے وہ پھیلا دیتے تھے، ادھر ادھر پہنچا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس آیت میں سمجھایا ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ بات کو یوں پھیلایا نہ کرو، بلکہ کسی ذمہ دار تک اس کو جو ہے وہ پہنچایا کرو. کیوں؟ وہ دور مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش کا دور تھا. ایک طرف یہودی تھے، مشرک تھے، قریش مکہ تھے، قبائل عرب تھے، سب اسلام کے دشمن، اور ان کے اسلام کے لیے حوصلے بہت بڑے ہوئے تھے. ہر طرف ایسی فضا پھیلی ہوئی تھی کہ دشمن مسلمانوں کو جو ہے وہ مروب کر رہا ہے، دہشت زدہ کر رہا ہے، اور کبھی کوئی کہتا کہ ایک بھاری لشکر آ کر حملہ کرنے والا ہے نا. جیسے اس سلسلے میں جو ہے ایک اور بھی مطلب واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ لوگ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے خود رسول اللہ کے پاس جا کر اس کی تحقیق کی تو پھر انہوں نے آ کر اعلان کیا کہ آپ نے طلاق نہیں دی. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی. تو اب کیا ہے کہ سنی سنائی بات کو ایسے ہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. تو آپ نے تحقیق کی اور پھر آ کے لوگوں کو بتایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی طلاق نہیں دی. پھر دوسری بات اس سے کیا پتا چلتی ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کر دے. تو بے تحقیق باتوں کا اڑانا بھی گناہ ہے. پھر اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے تو دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے. تو افواہیں پھیلانا، باتوں کو بغیر تحقیق کے پھیلانا، مسلمانوں کے حوصلے جو ہے ان کو کم کرنا یا پریشان کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. تو اس سے یہ اصول ملتا ہے زندگی کے لیے کہ افواہوں کی تحقیق کرنی چاہیے. کوئی بھی بات ہو، کسی کی کوئی منگنی کی خبر ہے، ڈیتھ کی خبر ہے، کوئی کامیابی کی خبر ہے، کسی کی موونگ کی ہے، کوئی لینے دینے کی ہے، کوئی آنے جانے کی ہے، کوئی بھی بات ہو، تو بغیر تحقیق کے اس کو سوسائٹی میں نہیں پھیلانا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے کہ متعلقہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا دی جائے تاکہ یستنبطونہ ہو منہم، ताकि वो इससे सही नतीजा अखज कर सकें, ताकि वो बता सकें कि मामला क्या है और क्या करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात गैर जिम्मेदाराना जो अफवाहें फैलाई जाती हैं तो उसके बहुत दूरस नतीजे निकलते हैं। और यहाँ पे सख्ती के साथ मुतनब्बे कर दिया गया कि अफवाहें फैलाने से बाज रहें और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो मामले की तहकीक करके मामले को संभाल सके। इसकी मैं आम मिसाल भी आपको देती हूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मसलन बहुत कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और खाने के 3 बेचके थे जो पके हुए थे, जो खाना तकसीम करने वाला अमला है उनको 1 का पता है, 2 का नहीं पता। अब 1 जो है वो उसने जब सर्व कर लिया तो बाहर आके जो लोग खाना खा रहे हैं उनको कहता है जी खाना ही खत्म हो गया, पूरे बात फैल जाती है, वो बारात हो सकती है, वो मेहमान हो सकते हैं, कोई दर्स की महफिल हो सकती है कि खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, हवा उखड़ जाती है जिन लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया होता है। तो जिम्मेदार अगर खत्म भी हो जाए तो भी जिम्मेदार तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बाहर वाले तो कुछ नहीं कर सकते, अंदर वाला शख्स जो है फौरन कुछ भी कर सकता है, वो पिज्जा मंगा ले, वो बर्गर मंगा ले, वो कुछ भी इंतजाम करे, वो समोसे दे दे, तो कोई बात नहीं है ना। तो बाज़ औक़ात मौके की मुनासिब से देखना चाहिए बात कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है ना। बाज़ औक़ात लोग छुट्टी अनाउंस खुद ही कर देते हैं, इंतजामिया को नहीं पता होता कि छुट्टी है भी कि नहीं है। तो ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम मिलता है कि अमूमी जिंदगी में भी हमारे ये आदत होनी चाहिए कि हम अफवाहें ना फैलाया करें। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहू लत्तबअतुकुम अश्शैतान इल्ला क़लीला, तुम पर अगर अल्लाह की मेहरबानी और रहमत ना होती तो क्या था कि तुम्हारी ऐसी कमजोरियां थी कि सवाए चंद के तुम सब शैतान के पीछे लगे होते। ये अल्लाह का फजल है, फजलुल्लाह अलैकुम व रहमतुहू और उसकी रहमत है, लत्तबअतुकुम अश्शैतान इल्ला क़लीला, वरना अलबत्ता तुमने ज्यादातर लोगों ने शैतान की पैरवी कर ली होती सवाए चंद के। तो इससे ये बात पता चलती है कि हमें संभलना चाहिए, ये अल्लाह का फजल एहसान है कि अल्लाह ताला हमें शैतान के पीछे भाग कर चल खड़े होने से जो है वो मना कर रहा है, रहनुमाई कर रहा है। तो ये जो आयत है ना, दरअसल ये इस्लाम के सियासी निज़ाम की अहमियत बताती है, उलुल अमर लोग जो है उनका दर्जा बताती है, और ये बात पता चलती है कि दीन के लिहाज से या दुनिया के लिहाज से जो लोग भी सूझबूझ रखने वाले हों, जो पेश आने वाले हालात और मामलात हैं, तो उनको बताना चाहिए ताकि वो शरीयत के मुताबिक और मसलियत के मुताबिक बर वक्त जो है वो हालात के मुताबिक कदम उठा सकें, है ना। कोई भी हालात हो जाए उसको आम फैलाने से पहले, मुसलमानों को डराने से पहले, मरूब करने से पहले, दहशत ज़दा करने से पहले जरूरी है कि उनको भी बता दिया जाए कि सही पॉलिसी क्या इख्तियार करनी है, जो गहरी सूझबूझ रखने वाले लोग हैं। और आप देख लें कि ये सारी बातें जो है हमें क्या बताती हैं कि असल चीज जो है वो क्या है कि मामलात को गहरी सूझबूझ से और बसीरत से हल करना, ना ये कि उसको खराब कर देना और एक बर्निंग क्वेश्चन बन जाए या डिस्प्यूटेड मामला हो जाए और कोई भी उसका हल ना निकले। फ़कातिल फ़ी सबीलिल्लाह, फिर वही बात कही कि बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अल्लाह की राह में लड़ो, ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ्सका, तुम अपनी जात के सिवा किसी के जिम्मेदार नहीं हो। अब फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही जा रही है कि आप जो हैं वो अल्लाह के रास्ते में उठें, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें। और इसके साथ ही जो है वो क्या बात कही जा रही है कि आप किसी और के जो है वो जिम्मेदार नहीं है या आप से किसी और के बारे में पूछा नहीं जाएगा। तो यानी अगर कोई भी ना उठे तो आपको उठना चाहिए, अगर अफवाहें फैल रही हैं कि मामला बड़ा सख्त है फिर भी आपको जाना चाहिए। और आपको वो बात भी याद होगी कि गज़वा उहद के दूसरे दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले थे तो उस वक्त जो थे कुछ लोग जाना चाहते थे, कुछ नहीं जाना चाहते थे, है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हदायत मिली थी कि आपको जो है वो जाना ही है, तो आपने कहा था कोई नहीं उठेगा तो मैं अकेला भी जाऊंगा ना। तो ये एक बात लोग कहते हैं कि शायद का शान नजूल जो है वो ये है। तो आप 70 सहाबा के साथ बदरे सुगरा को तशरीफ ले गए, वो जगह का नाम है, और फिर अबू सुफयान जो था वो आया ही नहीं था, वैसे ही अल्लाह ताला ने मुसलमानों का उस पर रोक डाल दिया था। तो अब यहाँ पर ये इस तरफ भी इशारा है और आम जिंदगी में भी कि जो चीज सही हो, जो ठीक हो, तो अल्लाह के नबी को उठना चाहिए और आम जो कायद और जो मुसलमान हैं उनको भी उठना चाहिए। और दूसरे लोग नहीं उठते तो फिर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वह हर रे दिल मोमिनीन के मोमिनों को कहना जरूर चाहिए, उनको तरगीब वैसे जरूर देनी चाहिए। ये कुरान का बड़ा खूबसूरत अंदाज है, पहले क्या कहा कि आप उठें जिहाद करें, मतलब लोग नहीं उठ रहे, आप कह रहे हैं लोग नहीं उठ रहे तो कोई परवाह की बात नहीं। फिर चाहती क्या कहा कि वह हर दिल मोमिनीन, उनको भी मोटिवेट करें, उनको भी तरगीब दिलाएं, उनको भी एहसास दिलाएं कि जरूरत है। तो यहाँ पे असल में जो भी इज्तमाही जिंदगी के मामलात हैं, जो काम है, उन पर मतवजो किया जा रहा है कि उठना चाहिए, उनको करना चाहिए, अगर कोई ना उठे तो फिर अकेले भी करना चाहिए। बाजुकात ये होता है ना कि लोग करेंगे तो हम करेंगे, है ना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो तो उनका उसवा तो बेहतरीन उसवा है कि आप उठते थे और आप काम करते थे। और अब अहले ईमान को भी कहा जा रहा है कि उनको भी आप उकसाइए। तो इससे पता चलता है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, कि खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। हक ने की है दोरी दोरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, हक ने की है दोरी दोरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, तुझको इस जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। फिर फरमाया अस्सल्लाहु अन युकफ्फा, के करीब है कि अल्लाह ताला जो है वो क्या करे कि रोक दे बासल्लज़ीना कफरू, उन लोगों का जोर जिन्होंने कुफर किया है। तो अस्सल्लाहु अन युकफ्फा के करीब है कि अल्लाह बंद कर दे, उनकी हथेलियों को रोक दे, उनको हटा दे, जंग को रोक दे। बासल्लज़ीना कफरू, बासा यानी लड़ाई या जोर या कुव्वत ताकत उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया है। यानी आज अगर गज़वा बदर है या उहद है या मुसलमानों पर खतरात मंडला रहे हैं, लेकिन करीब है कि अल्लाह जो है वो इनको इनका जोर खत्म कर दे। वल्लाहु अशद्दु बासा व अशद्दु तनकीला, और अल्लाह ताला जो है अल्लाह का जोर सबसे ज्यादा जबरदस्त है। अशद्दु बासन, अल्लाह की ताकत ज्यादा है और इसकी सजा भी बड़ी ही सख्त है। तो यहाँ पर जो है ये बात बताई गई है कि यानी अल्लाह की सजा बड़ी सख्त है। तो शिद्दत बास के साथ शिद्दत सजा का जो जिक्र है, कहते हैं कि ये सजा खा कयामत में हो या दुनिया में, जैसे यहूदियों को दुनिया ही में सजा मिली, मुशरिकों को दुनिया ही में सजा मिली। तो जो लोग अपने समझते हैं कुव्वत ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मत भूलें कि वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तनकीला, कि हर फिरौन के लिए एक फिरौन है, हर नमरूद के लिए एक नमरूद है, और यानी गोया कि हर फिरौन के लिए एक मूसा है और हर नमरूद के लिए एक इब्राहिम है। यानी जो भी ताकतवर होता है बाजू का दुश्मन से ही एक और उसका अपना साथी उसका दुश्मन बनता है, उसको मार देता है। वरना फिर क्या है कि मुसलमानों में भी ऐसे लोग हुए कि जिन्होंने उनका जो है वो खात्मा कर दिया। मैं यशफा शफातन हसनत यकुल लहू नसीबुम मिन्हा, वमन यशफा शफातन सैयत यकुल लहू किफ्लुम मिन्हा, वकैना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुकीता। फिर फरमाया कि जो भलाई की सिफारिश करेगा वो इसमें हिस्सा पाएगा, और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो इसमें हिस्सा पाएगा, और अल्लाह हर चीज पर नजर रखने वाला है। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सिफारिश की हकीकत क्या है और सिफारिश की किस्में कितनी हैं। तो सिफारिश की हकीकत क्या है कि किसी की राय से राय मिलाना, जैसे किसी की एक राय है तो आपने राय मिलाई तो वो दो हो गई। तो अब यह है कि देखना यह चाहिए कि जिसके लिए आप सिफारिश कर रहे हैं उसका मुतालबा हक है और जायज है, और ये भी हो सकता है कि उसका मुतालबा गलत हो, है ना, उसका मुतालबा ही नाजायज हो। तो सिफारिश जो है अगर हक है और जायज है तो फिर तो उसको मिलेगा सवाब, और अगर जो है सिफारिश नाजायज है या तरीका नाजायज है तो उसको मिलेगा अजाब, उसको फिर गुनाह मिलेगा। तो ये हिस्सा मिलने का क्या मतलब है कि जिस शख्स से सिफारिश की गई है वो जब इस मजलूम से महरूम का काम कर देगा तो जिस तरह इस काम करने वाले अफसर को सवाब मिलेगा, बिल्कुल इसी तरह सिफारिश करने वाले को भी सवाब मिलेगा। मसलन कोई मजलूम है, जालिम उसका हक नहीं देता, है ना, यतीम है, उसका माल किसी ने छीना हुआ है जालिम ने, आप जाके सिफारिश करते हैं कि यतीम का माल है इसको दे दीजिए, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों की सिफारिश करते थे। तो अब जो है, अब वो अगर दे देता है, कोई दूसरा समझाने पर अच्छा बन जाता है तो उसको अगर अजर मिलेगा तो आपने जो सिफारिश की आपको भी मिलेगी। और अगर कोई बुरा काम करता है और आप उसके बुरे काम में, गलत काम में उसकी सिफारिश करते हैं तो उसको तो अपने गुनाह का अजाब मिलेगा ही, तो आपको भी गलत काम की सिफारिश का जो है वो गुनाह मिलेगा। क्यों? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दालु अलल खैरी कफाइलिही, जो शख्स किसी नेकी पर किसी को अमादा करे इसको भी ऐसे ही सवाब मिलता है जैसा इस नेक अमल करने वाले को मिलता है। मसलन ये क्लास शुरू हुई, ठीक है, आपने भी पब्लिसिटी की, आपने भी लोगों को बताया, आप में से किसी ने कहा कुर्सियां मैं बिछाऊंगी, किसी ने कहा कोई मसला नहीं ऑफिस का काम मैं वॉलंटियर करने को तैयार हूं, ठीक है, किसी ने कहा कि कोई बात नहीं कोई नहीं आए मैं जरूर आती हूं, और आप बताते हैं और लोग आते हैं, तो अब जो जो इससे सीखता है और जो जो यानी इसकी केसेट है या रिकॉर्डिंग है या जो भी अच्छा काम है उसकी केसेट या रिकॉर्डिंग या वो फैलता है, तो जब तक जहां तक जितने लोगों तक पहुंचेगा लोग उससे सीखेंगे, आपके लिए जो है ना वो उसका सिफारिश में हिस्सा दाखिल है कि आपने साथ दिया, आपने उसकी तायीद की। जिस शख्स ने किसी मुसलमान के कत्ल में एक कलमा से भी मदद की तो कयामत में अल्लाह ताला की पेशी में इस तरह लाया जाएगा कि इसकी पेशानी पर ये लिखा होगा कि ये शख्स अल्लाह ताला की रहमत से महरूम और मायूस है। मसलन किसी ने तलाक को कोई दे रहा है मर्द और गलत दे रहा है, आप कहते हैं हाँ हाँ दो ये ऐसी ही है, आप कोई एक जुमला बोलते हैं उसने तलाक दी उसकी, आपने गलत सिफारिश की तो आपका भी उसमें हिस्सा डल गया। कोई कातिल है किसी को कत्ल कर रहा है, आपने गलत उसकी तारीफ की तो आपका भी उसमें जो है वो हिस्सा पड़ गया। तो ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं कि नेकी के काम में किसी को आमादा करना, उसकी सिफारिश करना, जिस तरह उसका सवाब मिलता है बिल्कुल इसी तरह बदी और गुनाह का कोई काम करता है और आप किसी को आमादा करते हैं या सहारा देते हैं तो आपको भी बराबर उसके गुनाह के जो है वो गुनाह मिलेगा। وكان الله على كل شيء مقيتا, और अल्लाह हर चीज पर नजर रखने वाला है। इसके मानी क्या है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिल है, कादिर है कि अमल करने वाले और सिफारिश करने वाले की जजा या सजा अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह को खूब पता है कि कोई सिफारिश कर रहा है किस नीयत से कर रहा है, किसी भाई की मदद करना मकसद है कि रिश्वत लेना मकसद है, कोई अपना मतलब निकालना मकसद है। तो बाज़ का सिफारिश करने वाला अपना कोई काम करना चाहता है तो अल्लाह ताला मुकीता है, अल्लाह खूब जानता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम सिफारिश किया करो तुम्हें सवाब मिलेगा, फिर अल्लाह ताला अपने नबी के जरिए जो फैसला फरमाए इस पर राजी रहो। इसी तरह हजरत एक औरत ने जो चोरी की थी कुरैश के खानदान की औरत ने, हजरत फातिमा ने, यानी तो आपने क्या कहा था कि मैं इसकी सिफारिश नहीं करूंगा, हजरत उसामा आपसे बहुत प्यार करते थे लोग उनको लेकर आए है ना, तो यानी बड़े बड़े लोगों को पेश किया कि किसी तरह आप उसकी सिफारिश करें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नहीं, अगर मेरी सगी बेटी फातिमा बिनत मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं जो है वो उसके हाथ जरूर काटता, तो इसमें सिफारिश नहीं हो सकती। तो अच्छी और सही सिफारिश करना, अल्लाह ताला हम सबको अमल की बेहतरीन तौफीक अता करे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका वनतूबु इलैक।